चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के नित्य चर्चा के 24वें सत्र में। हम लोग मध्य लीला प्रारंभ किए हुए हैं। मध्य लीला के पहले दो अध्याय, संपूर्ण शेष लीला, इनका सारांश, तीसरा अध्याय महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात अद्वैताचार्य इनके घर पर रहना, शची माता से मिलना, चौथा अध्याय माधवेंद्रपुरी इनकी भक्ति की महानता, गोपाल जी की प्राकट्य लीला और खिरचोर गोपीनाथ इनका वृत्तांत, पांचवा अध्याय साक्षी गोपाल इनका वृत्तांत, छठा अध्याय सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार, सातवा अध्याय महाप्रभु का दक्षिण भारत के लिए गमन और वासुदेव इनका उद्धार, आठवा अध्याय राय रामानंद संवाद, नौवा अध्याय संपूर्ण दक्षिण भारत भ्रमण, दसवा अध्याय महाप्रभु का पुनः जगन्नाथपुरी में आना और भक्तों का उनसे मिलना, ग्यारहवा अध्याय बंगाल से भी कुछ भक्त आना और महाप्रभु से मिलना और बेड़ा संकीर्तन पास टाइम्स, बारहवा अध्याय गुंडीचा मंदिर मार्जन, तेरहवा अध्याय जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और उसके पश्चात 13 रथ यात्रा और फिर आगे आता है 14वां अध्याय जो है हेरा पंचमी उत्सव, उसका ऑब्जर्वेशन, अध्याय 15 सारे भक्तों का गुणगान करके महाप्रभु बंगाल भेज देते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य इनके यहाँ पे प्रसाद और अमोक का उद्धार, अध्याय 16 महाप्रभु का वृंदावन जाने के लिए दूसरा प्रयास लेकिन वो असफल हो जाता है, महाप्रभु रामकेली में रूप सनातन इनसे मिलते हैं और कन्हैया नटशाला से वापस आ जाते हैं, 17 अध्याय झारखंड जंगल से महाप्रभु का वृंदावन के लिए जाना, वृंदावन गमन, 18वां अध्याय वृंदावन भ्रमण, 19वां अध्याय महाप्रभु का प्रयाग में आना और रूप गोस्वामी को शिक्षा, 20वां अध्याय महाप्रभु वाराणसी में और सनातन गोस्वामी को मिलना जो हमने कल देखा था। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हर रोज हम लोग ये सारा अध्यायों की श्रृंखला क्यों लेते हैं, इसके लिए लेते हैं कि जैसे संपूर्ण जो लीला है चैतन्य महाप्रभु की आदि मध्य अंत वो एक थ्रेड के समान है, जैसे एक धागा है और जो आज हमारा एक अध्याय हो रहा है तो उस धागे के अंदर एक फूल पिरोया जाने के समान है, तो ऐसे हमारे 20 फूल पिरो के हो गए हैं मध्य लीला के, और जब हम देखते हैं जो हार बनाता है व्यक्ति, तो जब वो पूरा देखता है कि कितने हार हो गए अभी, तो वो हार देख के उसे आनंद आता है, तो उस प्रकार से जो है वो ये सारे अध्याय एक एक फूल के समान है और जो संपूर्ण लीला जो चल रही है वो एक धागे के समान है, तो एक एक फूल हम लोग जो उसमें पिरो रहे हैं, तो इस प्रकार से, तो इसलिए कहाँ थे हम लोग, कहाँ तक आए हुए हैं, इसके लिए हम लोग सारे अध्यायों का गणना करते हैं और फिर बार बार हमारे मन में जाएगा तो वो याद भी रह सकता है। तो कल 20वां अध्याय हमने चर्चा किया, महाप्रभु सनातन गोस्वामी इनसे मिलते हैं और किस प्रकार से हमने देखा जो अधीक्षक था जेल का, उनको सनातन गोस्वामी अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि आप मुझे छोड़िए, कृतज्ञता का भाव जताते हैं, फिर भौतिक लाभ देते हैं, आध्यात्मिक लाभ के बारे में भी बताते हैं और ऐसा करने के पश्चात वो 7000 मुद्रा लेके सनातन गोस्वामी को छोड़ देता है और सनातन गोस्वामी किस प्रकार से पहाड़ी इलाके से जा रहे होते हैं वो हमने देखा। और पहाड़ी इलाके से जब जा रहे होते तो जमींदार होता है और वो उन्हें मारने के लिए तुला होता है क्योंकि उन्हें 8 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी जो सनातन गोस्वामी के पास उनके सेवक ईशान उनके पास थी, तो वो पहले ही दे देते हैं और फिर वो कहता है कि आप, जमींदार कहता है कि मुझे नहीं चाहिए आप रख लीजिए, तो वो कहते हैं कि आप नहीं मारेंगे तो दूसरा कोई हमें मार देगा। वो फिर 4 सेवक वो देता है सनातन गोस्वामी के साथ और फिर वो आगे चले जाते हैं। रातों रात वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र पार करा देता है और उसके पश्चात सनातन गोस्वामी ईशान को वापस भेज देते हैं 1 स्वर्ण मुद्रा के साथ। और फिर सनातन गोस्वामी आगे जाते हैं हाजीपुर में, जहां पर उनके बहनोई, क्या नाम था उनका याद है आपको, श्रीकांत, तो श्रीकांत से मिलते हैं और श्रीकांत उन्हें वहां पर कुछ समय रहने के लिए विनती करते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी उत्सुक है महाप्रभु से मिलने के लिए, कुछ खाया पिया नहीं है 2-3 दिन से और फिर दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं और वैसे ही वो एक ऊनी कंबल उनका बहनोई उन्हें भेंट में देता है, वो लेके सीधा चले जाते हैं वाराणसी में। समझता है कि महाप्रभु यहीं पर है तो चंद्रशेखर आचार्य इनके घर के बाहर बैठ जाते हैं और हमने देखा था कि किस प्रकार से महाप्रभु उन्हें अंदर बुला लेते हैं, उनके शरीर को स्पर्श करते हैं, तो फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे स्पर्श मत कीजिए और फिर महाप्रभु कहते हैं कि आपके भक्ति के बल पर आप तीनों जगत को पवित्र कर सकते हैं और मैं पवित्र होना चाहता हूं इसलिए मैं आपको स्पर्श कर रहा हूं। ये सनातन गोस्वामी की महानता। और फिर उसके पश्चात वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु हमेशा ध्यान रखे हुए थे, ये ऊनी ब्लैंकेट नई ब्लैंकेट लेके घूम रहा है, तो फिर वो नदी किनारे जाके वो किसी बंगाली वैष्णव से वो इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, आप अपनी नई दे देते हैं पुरानी ले लेते हैं और महाप्रभु उनका संन्यास धर्म देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार से फिर महाप्रभु को कुछ प्रश्न पूछते हैं सनातन गोस्वामी, प्रमुख 4 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। के आमी के रे आमार जारे तापत्र, पहला प्रश्न था मैं कौन हूं, मैं क्यों इस भौतिक संसार में 3 तापों में परेशान हो रहा हूं। तीसरा प्रश्न था साध्य क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और चौथा था साधन क्या है, उसे प्राप्त करने का उपाय। तो महाप्रभु ने उनके विस्तार से जवाब देना प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले हम कौन है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन क्यों हम परेशान हो रहे हैं, अनादिकाल से हम भगवान कृष्ण से बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख, इसलिए माया के चंगुल में हम दुख भुगत रहे हैं। और उसके पश्चात साध्य और साधन की चर्चा की थी। साध्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इनकी प्राप्ति, और साधन है उसके लिए भक्ति, और बाकी कुछ भी उपाय जो है वो नहीं प्रयोग में लाया जा सकता। और इस प्रकार से महाप्रभु ने वो जो निर्धन व्यक्ति है उसका उदाहरण दिया था कि निर्धन व्यक्ति है, उसके पास कोई ज्योतिष आ जाता है और तब वो संबंध स्थापित करता है कि आपके पिताजी कहां पर धन छोड़ के गए हैं। तो हमने आपको एक मैप बनाने के लिए कहा था, आपको यदि याद होगा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, वहां पर दिशा निकालनी है। सबसे नीचे दक्षिण में जो है वो मधुमक्खियां कही गई है जो आपको काट लेगी, उसके पश्चात पश्चिम में यक्ष है वो खा लेगा, और जो उत्तर है वहां पर कौन है, एक अजगर स्थित है जो आपको गिलंकृत कर लेगा। इसलिए इन दिशाओं में नहीं जाना है, जाना है कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, थोड़ा भी खुदाई करेंगे तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और योग मार्ग है, इन तीनों को नकार के भक्ति मात्र एकमात्र साधन के रूप में महाप्रभु ने स्थापित कर दिया था। तो केवल ये तो साधन बता रहे महाप्रभु, अभी साधन का विश्लेषण नहीं हो रहा है, केवल भक्ति कैसे श्रेष्ठ है उसकी महाप्रभु ने चर्चा की। और उसके पश्चात संबंध ज्ञान उन्होंने दृढ़तापूर्वक देना प्रारंभ किया कि किस प्रकार से जो भगवान है उनके इनके 3 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, खास करके स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप, इसका भी चार्ट हमने बनाया था चार्ट हम आपको देने वाले हैं, अभी तक दिया नहीं है। तो स्वयं रूप के भी दो होते हैं, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, ये हमने देखा था। और जो तदेकात्म है उसके दो प्रकार होते हैं, विलास और स्वांश। विलास में भी प्राभव और वैभव होते हैं, और स्वांश में उसमें छह प्रकार के अवतार भगवान के, पुरुषावतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। और जो तीसरा आवेश है वो सीधा शक्त्यावेश अवतार के साथ ज्वाइन हो जाता है। और इसके पश्चात फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के उदाहरण से भगवान की लीला कैसी नित्य है वो महाप्रभु ने समझाया सनातन गोस्वामी को। और भगवान के तीन तरतम न्याय से भगवान के तीन रूप वो भी समझाए, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। जैसे वैष्णव होता है पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, वैष्णव भी होता है ना, वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम, वो भी हमने चर्चा किया था पहले। तो उसी प्रकार से जो है वो भगवान का भी स्वरूप होता है, पूर्ण कृष्ण, पूर्णतर कृष्ण, पूर्णतम कृष्ण, गुड, बेटर, बेस्ट। तो पूर्ण है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वैकुंठ आदि पर्व्यों में जो है वो पूर्ण कृष्ण है। उसके पश्चात पूर्णतर कृष्ण वो पाए जाते हैं मथुरा, द्वारका, पुरी में। और उसके पश्चात जो है वो पूर्णतम कृष्ण जो व्रजेंद्र नंदन व्रज में पाए जाते हैं वो है पूर्ण कृष्ण। तो इस प्रकार से सारे स्वरूपों का हमने वर्णन किया था। तो ये भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में जानना ये संबंध ज्ञान का हिस्सा है। तो जब हमारा जितना संबंध ज्ञान पक्का हो जाएगा उतना फिर अभिधेय अच्छा हो सकता है। इसलिए संबंध ज्ञान के बारे में महाप्रभु बहुत अच्छे से सनातन गोस्वामी को समझाए हैं, और इसलिए 21वां अध्याय भी संपूर्ण संबंध ज्ञान के बारे में ही है। आगे आगे बहुत सुंदर आएगा। 21वां अध्याय जो है वो संबंध ज्ञान ही है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य है। 22वें अध्याय में अभिधेय दिया गया है, भक्ति की विधि, और 23वें अध्याय में मध्य लीला के प्रयोजन के बारे में बताया है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो जो 20वां अध्याय हमने कल चर्चा किया वो, और आज जो चर्चा करने वाले हैं 21 अध्याय 20 और 21, ये केवल संबंध ज्ञान के आधार पर है। अध्याय 22 जो आने वाला है वो अभिधेय है, अभिधेय मतलब प्राप्त करने, साध्य को प्राप्त करने की विधि, और अध्याय 23 वो है प्रयोजन, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है उसका फल क्या होता है, कृष्ण प्रेम क्या होता है वो फल, तो वो जो है वो 23वें अध्याय में चर्चा किया जाएगा। तो आज हम 21वां अध्याय का प्रारंभ करेंगे और कल 22 23 दोनों हम लोग एक साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और आज भी यदि होता है समय परमिट करेगा तो 22 में हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। तो अध्याय 21 सनातन गोस्वामी शिक्षा कंटिन्यूज, संबंध ज्ञान चल रहा है, और उसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य ज्ञान। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी से आगे कहते हैं कि अभी महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के धाम, भगवान श्री कृष्ण के गुण ये कैसे अनंत है इसका विश्लेषण करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान का धाम कैसा विशेष है, आध्यात्मिक धाम, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। सर्वस्वरूपेर धाम पर व्योम धामे, पृथक पृथक वैकुंठ सब नाही गणने। सर्वस्वरूपेर धाम, भगवान के सारे स्वरूप जो है अलग अलग, जो हमने कल देखा था तदेकात्म रूप लीजिए, अलग अलग अवतार लीजिए, सारे स्वरूपों का आश्रय स्थान क्या है, परव्योम धाम। जो परव्योम धाम है वहां पर सारे भगवान के अलग अलग रूपों का आश्रय स्थान है। पृथक पृथक वैकुंठ सब नाही क गणने, इतने सारे वैकुंठ है जो परव्योम है। हमने नित्यानंद तत्व निरूपण यदि आपको याद है आदि लीला का 5वां अध्याय, उसमें सारा सृष्टि का वर्णन किया गया है। तो परव्योम है, तो परव्योम में कितने सारे वैकुंठ है इसकी गणना ही नहीं है, ऐसा यहां पर महाप्रभु बताते हैं। और वहां पर जो भगवान के पार्षद होते हैं वो भी षडैश्वर्य पूर्ण होते हैं। तो इसलिए एक उदाहरण देते हुए महाप्रभु समझाते हैं कि कल्पना कीजिए एक कमल का फूल है, और कमल का फूल में जैसे बीच वाला हिस्सा होता है और उसके इर्द गिर्द पंखुड़ियां होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक धाम है, प्रमुख कृष्ण लोक, जिसे कर्णिकार कहते हैं, कर्णिकार मतलब बीच वाला हिस्सा फूल का, तो जो कर्णिकार है वो कृष्णलोक है, और इर्द गिर्द में जितने सारे कमल दल है, कमल की पंखुड़ियां हैं, वो सारे वैकुंठ के समान है। और वो कितने हैं? वो अगणित और अनंत है, जिनकी कोई गणना ही नहीं कर सकता। और महाप्रभु भगवान कृष्ण के धाम के बाद भगवान के गुण भी कितने अनंत और अपार है, इसके बारे में कहते हैं, एमत कृष्ण र दिव्य सद्गुण अनंत ब्रह्मा शिव सनकादि ना पाययार अंत। भगवान के जो दिव्य सद्गुण है वो भी अनंत है, ब्रह्मा जी शिव जी सनकादि चतिश कुमार ये भी इनकी गणना और उसके बारे में नहीं जान सकते, इनकी तो बात ही दूर है। कृष्ण स्वयं अपने गुणों के बारे में नहीं जानते कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, कितने सद्गुण हैं। और ये भगवान के परव्योम का गुण और धाम का वर्णन करने के पश्चात महाप्रभु वृंदावन का वर्णन करते हैं, खास करके भगवान कृष्ण के गोप कितने हैं, उन गोपों की कितनी गैया है, गोपियां कितनी हैं, इनका भी कोई लेखा जोखा नहीं है, ये भी अनंत है। ये यहां पर जो है वो, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण वत्स्य असंख्यातई, भगवान कृष्ण के जो वत्स, वत्स मतलब गाय और उनके बछड़े हैं, वो कितने ही असंख्यातई, उनकी संख्या ही नहीं बताई जा सकती, उनकी उनकी गणना ही नहीं है। और ब्रह्मविमान लीला जब हुई थी तो ब्रह्मविमान लीला के पश्चात जितने सारे ग्वालबाल थे वो पुनः चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए थे, और चतुर्भुज के रूप के पश्चात वो पुनः ग्वालबाल के रूप में अवतरित हो गए थे, और वो चतुर्भुज रूप कृष्ण के अंदर समा गए थे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं ब्रह्मविमान लीला श्रीमद भागवतम के 13वें अध्याय में दशम स्कंद के, और ब्रह्मा जी वहां पर कहते हैं कि बाकी कोई कहता हो कि मैं कृष्ण को जानता हूं तो उसे कहने दो, जानंत एव जानंतु किम भोक्त्या तमे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। जानंत एव जानंतु किम भोक्त्या तमे प्रभो, कोई कहता है मैं जानता हूं कृष्ण कैसे है, कृष्ण के कितने रूप है, उनके गुण कितने हैं, तो उसे कहने दो वो जानता है, तो उसे कहने दो जानता है, लेकिन मेरे मन से मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव अगोचरः, मेरे मन के द्वारा, मेरे बुद्धि के द्वारा, मेरे वाणी के द्वारा मैं ये कहता हूं कि भगवान को मैं नहीं जानता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो 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 सृष्टि करता है, तो वो भी नहीं जान सकते। ऐसा अपर ऐश्वर्य कृष्ण का, अपर ऐश्वर्य कृष्णेर नहीं का गणन, इनकी गणना ही नहीं है। और ये बताने के पश्चात ये सारा ऐश्वर्य धाम गुण और वृंदावन का ऐश्वर्य बताने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु हृदय से विक्षुब्ध हो जाते हैं और सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ के श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाना प्रारंभ करते हैं, जिनमें भगवान को त्रयधीश कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रयधीश मतलब तीन के स्वामी है भगवान। तो अब यह त्रयधीश क्या है? साधारण करके हम लोग त्रयधीश जब सुनते हैं तो तीनों लोकों के स्वामी इस प्रकार से हमारे मन में आ जाता है। परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान ताते बड़ तारसमा केहना ही आन। परमेश्वर जो भगवान जो है वो परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, ये परमेश्वर है, सारे ईश्वरों के ईश्वर है, और स्वयं भगवान वो अंशी है, बाकी सारे केवल अंश मात्र है। ताते बड़ तारसमा आर नहीं आन, उनसे बड़ा और उनके समान और कोई नहीं है संसार में। न त्वत् समस्त्यभ्यधिक कुतोन्यो, उनके समान और उनसे बढ़कर मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण वही बताते हैं कि मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई चीज है ही नहीं, यह है सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण। तो ये त्रयधीश के महाप्रभु सनातन गोस्वामी को तीन अर्थ बताते हैं, सामान्य अर्थ, मध्यम अर्थ और गुह्य अर्थ। ये त्रयधीश के तीन अर्थ बताए गए हैं। मध्य सबसे पहले सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ क्या है? जो भगवान के तीन गुण अवतार है ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनके वो स्वामी है, इसलिए उन्हें कहा जाता है त्रयधीश। तो यह है सामान्य अर्थ, जो गुण अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके वो स्वामी है, इसलिए त्रयधीश कहे जाते हैं। दूसरा है मध्यम अर्थ, जो तीन पुरुष अवतार है क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, इन तीनों के भी वो स्त्रोत है, स्वामी है, इसलिए उन्हें कहा जाता है त्रयधीश। तीन पुरुष अवतार हम सब तो जानते हैं, शूरोदकशाही अवतार, क्षुरोदकशाही, गर्भोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही। कारणोदकशाही विष्णु कारण सागर में लेटते हैं, जिनके रोम छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। उसके पश्चात गर्भोदकशाही विष्णु जो हर ब्रह्मांड में स्थित होते हैं और हर ब्रह्मांड में जो है वो गर्भोदकशाही विष्णु पाए जाते हैं। और क्षुरोदकशाही विष्णु क्षीर सागर में होते हैं, जो सारे जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हो गए क्षुरोदकशाही विष्णु। और इन तीनों के भगवान कृष्ण स्वामी है, उनके स्त्रोत है, इसलिए उन्हें कहा जाता है त्रयधीश। अभी आता है गुह्य अर्थ। अभी ये गुह्य के भी दो विभाग बनते हैं, ए और बी। आप समझ रहे भगवान त्रयधीश के तीन मीनिंग है, सामान्य, मध्यम, गुह्य। सामान्य हमने देख लिया, तीन तीन ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी, इसलिए त्रयधीश, ये सामान्य अर्थ है। उसके पश्चात हमने देखा कि वो तीन पुरुषावतार, उनके भी स्त्रोत है, इसलिए वो त्रयधीश है, ये मध्यम अर्थ। और गुहिया के अभी दो भाग बनेंगे। तो गुहिया का भाग ए क्या है, भगवान श्री कृष्ण के तीन आवास है। कौन से है तीन आवास? अंतःपुर, मध्य आवास और बाह्य आवास। तो इन तीनों आवासों के भगवान श्री कृष्ण स्वामी है, इसलिए वो हो जाते हैं त्रयधीश। तो अंतःपुर मतलब क्या, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय अपना निकटवर्ती धाम, जिसे कहते हैं गोलोक वृंदावन, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के नित्य माता, नित्य पिता, नित्य संगी, वो सब निवास करते हैं, वो है भगवान का अंतःपुर आवास। दूसरा होता है भगवान का मध्यम आवास। मध्यम आवास वो है जहां पर भगवान नारायण के रूप में परव्योम धाम में निवास करते हैं, वो है भगवान का मध्यम आवास। और दूसरा है भगवान का बाह्य आवास, जिसे कहा जाता है देवी धाम नाम से। माया जिनकी दासी है, जीव वहां के वासी है, वो है देवी धाम। मतलब ये भौतिक जगत, जहां पर माया देवी भगवान की नित्य सेविका के रूप में सेवा करती है भगवान की, और हम जैसे सारे जीवात्माएं जहां पर निवास करते हैं, वो भी भगवान का आवास है किसी न किसी प्रकार से। भगवान जब संभवामी युगे युगे, हर एक युग में भगवान जब युगावतार के रूप में प्रकट होते हैं, तो इस धरातल पर सारे सारे ब्रह्मांडों के अंदर भगवान प्रकट होते हैं, तो इसे देवी धाम कहा गया है। तो अंतःपुर आवास, मध्यम आवास और बाह्य आवास जो देवी धाम के रूप में, ये जो है तीन आवास है, उनके भी वह स्वामी है, वहां पर वो रहते हैं, इसलिए उनका नाम है त्रयधीश। तो इसको थोड़ा सा विस्तार किया है महाप्रभु ने, और उसके बाद जो गुहिया है उसका पार्ट बी हम लोग देखेंगे। तो इसके पश्चात महाप्रभु अभी सुनाते हैं तीन तीन जो आध्यात्मिक संसार और जो भौतिक संसार है, उसकी तुलना महाप्रभु करते हैं। चिच्छक्ति विभूति धाम त्रिपाद ऐश्वर्य नाम, माइक विभूति एक पाद अभिधान। जो आध्यात्मिक संसार है, जो परव्योम हमने कहा था, वो त्रिपाद विभूति के नाम से जाना जाता है। मतलब संपूर्ण सृष्टि का हम लोग यदि देखें तो वो बनता है त्रिपाद विभूति, मतलब तीन चतुर्थांश। और बाकी जो भौतिक विभूति है या माइक विभूति जिसे कहा गया है, भौतिक संसार, वो एक पाद विभूति यानी एक चतुर्थांश। तो संपूर्ण यदि हम लोग देखें, स्क्वायर निकाला जाए, तो उसमें यदि हम लोग प्लस साइन निकाले, तो जो तीन हिस्से रहेंगे वो आध्यात्मिक जगत रहेगा, और जो एक हिस्सा है वो रहेगा भौतिक जगत। तो उसे कहा जाता है एकपाद विभूति भौतिक जगत, और आध्यात्मिक संसार होता है त्रिपाद विभूति। तो देखिए चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर बताया गया है, ये हम लोग गीता कोर्स में भी बताते हैं, लेकिन कई भक्तों को पता नहीं होता ये आता कहाँ पे है, एक दिया कहाँ गया है शास्त्र में। तो ये यहाँ पर, और इसके सारे रेफरेंसेस कई सारे पुराणों से, उपनिषद से महाप्रभु बताते हैं कि कहाँ पर इसका वर्णन है, तो विस्तार से इसे बाद में देख सकते हैं आप लोग। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये तीन चतुर्थांश विभूति जो है ना, वो आध्यात्मिक संसार, उसका वर्णन कर पाना असंभव है, बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी जो एक चतुर्थांश है उसके बारे में थोड़ा सा सुनो पहले। तो उसके बारे में महाप्रभु सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि कारणोदकशाही विष्णु उनके रोम कूप से कई सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। उसकी गणना कितनी है? अनंत है। अनंत ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी रहते हैं। तो उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो शिव जी और ब्रह्मा जी भी अनंत बन जाते हैं, उनकी भी गणना नहीं हो सकती। और इसके लिए महाप्रभु एक कहानी सुनाते हैं कि कितने सारे अगणित है और इनको समझ पाना कितना मुश्किल है। तो एक बार क्या हुआ द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए ब्रह्मा जी उपस्थित हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी उपस्थित हो जाते हैं तो द्वारपाल को आके मिलते हैं सर्वप्रथम, और द्वारपाल फिर संदेशा लेके जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से। द्वारपाल कहते हैं कि आपको मिलने के लिए एक ब्रह्मा जी आए हुए हैं। तो द्वारपाल संदेशा जब देता है कृष्ण को, आपके मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए हुए हैं, तब कृष्ण पूछते हैं, उनको पूछो कौन से ब्रह्मा जी आए हुए हैं। तो द्वारपाल बाहर जाके पूछता है, आप कौन से ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जी बोलते, ऐसा कैसा प्रश्न है, जाओ जाके बताओ, चार सर वाले ब्रह्मा आए हैं, सनत कुमार आदि के पिताजी। तो वो जाके बोल देते हैं भगवान कृष्ण को। तो कृष्ण बोलते कि ठीक है, लेके आ जाओ। तो वो आ जाते हैं, ब्रह्मा जी अंदर आ गए चार सर वाले, और प्रणाम करते हैं कृष्ण से, और कृष्ण पूछते कि कैसे आना हुआ ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी कहते कि ये प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताओ, आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा जी आए हुए हैं? मेरे अलावा भी और कोई ब्रह्मा है इस संसार में? तो फिर भगवान एक अलग चाल चलते हैं। वहां पर ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण ध्यान करते हैं थोड़ा सा, और कई सारे दूसरे अलग अलग ब्रह्मा जी को भी वहां पर बुला लेते हैं। और अभी वहां पर ये ब्रह्मा जी हमारे चार सर वाले वो कॉर्नर में खड़े हैं, और वो देखते हैं यहाँ पर आठ सर वाले ब्रह्मा, कुछ ब्रह्मा है जिनके 16 सर है, कुछ ब्रह्मा जी है जिनके 100 सर है, कुछ ब्रह्मा जी जिनके 1000 सर है, कुछ ब्रह्मा जी जिनके 10,000 सर है, कुछ ब्रह्मा जी जिनके 1,00,000 सर है, कुछ ब्रह्मा है जिनके 10,00,000 सर है, और कई सारे रुद्र और शिव जी वो सारे आ गए यहाँ पर, और सारे स्तुतियां अर्पण कर रहे हैं, सारे भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और उनके सारे इतने सारे सर और इतने सारे ब्रह्मा उन सारे के मुकुट टकरा रहे हैं, और वो मुकुट मानो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देख के ये हमारे ब्रह्मा जी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले यहाँ पे क्या चल रहा है ये? और सारे ब्रह्मा अभी भगवान की स्तुतियां करने के पश्चात सारे हाथ जोड़ के, और हो क्या रहा है, सारे ब्रह्माओं को लग रहा है कि मैं अकेला ब्रह्मा यहाँ पे उपस्थित हूँ, वो दूसरे किसी और ब्रह्मा को नहीं देख पा रहे। सारे अकेले सारे हाथ जोड़ते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है, हमें किसके लिए बुलाया है? भगवान कृष्ण कहते हैं किसके लिए बुलाया है? कृष्ण कहे तो मबा देखी ते चित्त होइल, तहा लागी इठाई सबार बोलाइल। आपको देखने का केवल इच्छा हो गया, इसलिए मैंने आपको बुलाया हुआ है, कुछ काम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है आपके धाम में? वो कहते हैं कि हाँ, सारे असुरों का तो आपने वध कर दिया है, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, अभी कुछ नहीं है। तो भगवान फिर उनको आशीर्वाद देते हैं, वो सारे ब्रह्मा जी चले जाते हैं, एक ब्रह्मा जी रह जाते हैं हमारे चार सर वाले ब्रह्मा। वो चार सर वाले अभी चारों सर उनके चकराने लगते हैं, यहाँ पे ये सब क्या हो गया, इतने सारे ब्रह्मा मैंने कभी, मुझे तो लगता था मैं अकेला ब्रह्मा हूं इस संसार में। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि देखो, आप जिस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है ना, उस ब्रह्मांड का डायमीटर, डायमीटर को व्यास कहते हैं, व्यास, व्यास। तो जो आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 4 अरब मील है। तो 4 अरब मील के व्यास वाले आप सृष्टिकर्ता है, इसलिए आपको 4 ब्रह्मा है। तो ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जिनका व्यास जो है वो अरबों खरबों मील तक लंबा है, और इसलिए वहां के ब्रह्माओं के सर भी इस प्रकार से अरबों खरबों सर वाले भी ब्रह्मा पाए जाते हैं। तो इतना बड़ा जो है वो सृष्टि है। एक पद विभूति इहार नाही परिमाण, त्रिपद विभूतिर के बा कोरे परिमाण। महाप्रभु कहते सनातन गोस्वामी से कि एक पद विभूति जो है भौतिक संसार, केवल ब्रह्मांड कितने हैं उसका भी कोई परिमाण नहीं दे सकता, तो जो त्रिपाद विभूति है आध्यात्मिक संसार, उसका परिमाण भले कौन दे सकता है, इसको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। तो ये सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने समझाया, जो 3 अर्थ है त्रिदिश के, उसका जो गुड़ अर्थ हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका ए पार्ट हो जाता है, और उसका बी पार्ट महाप्रभु बताते हैं, जो गुह्य अर्थ है भगवान के, और 3 आवास कहे जाते हैं पर व्योम के अंदर, जो अंतःपुर हमने देखा था ना, अंतःपुर मध्यम और बाह्य, तो जो अंतःपुर था उसके अंदर भी 3 निवास पाए जाते हैं, द्वारका, मथुरा और गोलोक। तो ये तीनों के भगवान श्री कृष्ण जो स्व भगवान श्री एते चमचह कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान कृष्ण है उनके ये 3 आवास है, गोकुल, मथुरा और द्वारका, इसलिए उनको जो है वो क्या कहा जाता है, त्रयधीश कहा जाता है। तो इस प्रकार से त्रयधीश का वर्णन महाप्रभु करते हैं और महाप्रभु कहते हैं ये जो ऐश्वर्य है भगवान का सारा, ये ऐश्वर्य एक अमृत का सिंधु के समान है और इसकी केवल मैं एक बिंदु आपको जो है वो दर्शा रहा हूं। तो इस बिंदु का दर्शन करते करते महाप्रभु अभी ये सारा ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया, अभी माधुर्य का ज्ञान प्रकट करेंगे। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य ज्ञान। तो यहां पर ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, अभी माधुर्य ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं भगवान। तो भगवान इतना मधुर है भगवान का स्वरूप, जो प्रमुख स्वरूप होता है भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम में, वही स्वरूप एक मनुष्य रूप लेके भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अवतरित होते हैं और अनंत लीलाएं करते हैं। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। जीवेर कारणे इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, उनके मन को आकर्षण करने के लिए अपनी ओर भगवान श्री कृष्ण, वही जो उनका प्रमुख मुख्य अंश मुख्य स्वरूप होता है, उसी को एक नर रूप में लेके इस धरातल पर आते हैं और लीला करते हैं। और इनका 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 मधुर उनका उनका मधुरता के बारे में वर्णन करते हुए महाप्रभु सुनाते हैं सनातन को। कृष्णे रयते खेला सर्वोत्तम नर लीला नर वपु ताहर स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीलार होयो अनुरूप। क्या कहते हैं? कृष्ण रयते खेला सर्वोत्तम नर लीला, जितने सारे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है, जितनी सारी लीलाएं हैं, उसमें सर्वोत्तम कौन सी है लीला? नर वपु लीला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं और नर वपु तहार स्वरूप, जो नर वपु वपु का अर्थ है शरीर, जो नराकृति लेके इस संसार में आते हैं, वो लीला सर्वश्रेष्ठ लीला मानी जाती है। क्या है उस लीला में भगवान कृष्ण कैसे आते हैं? गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, एक गोप का वेश परिधान करके आए हैं। वेणुकर अपने हाथ में वेणु लेते हैं और उनका वय कौन सा है? नव किशोर नटवर। नव किशोर किशोर वयीन है वो, और नटवर वो त्रिभंग ललित है, तीन जगह पर वो भंगिमा आती है उनके शरीर को, उनकी उनके चरणों में, उनकी कमर में और उनकी ग्रीवा में। तो इस प्रकार से ये त्रिभंग नटवर ये नृत्य करते हैं। नर लीलार होयो अनुरूप, और ऐसा रूप लेके आते हैं जो नर लीला के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसी है उनकी मधुरिमा। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे स्वरूप को लेके आते हैं और सारे बद्ध जीवों का मन अपने और आकर्षित कर लेते हैं। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, इसलिए उनका नाम बनता है कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इतना उनका मोहक रूप होता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी अपने रूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं कि ऐसी क्या है मेरे अंदर जिससे ये सारे भक्त आकर्षित हो जाते हैं। तो स्वयं को भी आकर्षित कर लेते हैं और जो पतिव्रता श्रोमणिया है, जो लक्ष्मी देवियां, उनको भी आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर। हमने देखा था, आपको याद है, मध्य लीला का अध्याय 9 दक्षिण भारत भ्रमण जब था, उसमें वल्लभ भट्ट इनसे जब चर्चा होती है तो उसमें महाप्रभु कहते हैं कि हमारे कृष्ण इतने आकर्षित है कि तुम्हारे लक्ष्मी को भी वो आकर्षित कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हो जाता है मदन मोहन। तो इतना उनका जो है वो सुंदर रूप है। और इस मदन मोहन के रूप में जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी की ध्वनि के उसके बारे में तो क्या कहना, वो इतनी मधुरतम होती है कि स्थावर जंगम इनके स्वरूप को परिवर्तित कर देती है। तो जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुन लेता है तो जो पत्थर है वो पिघलने लगते हैं, वो स्थिर है, जो वृक्ष है वो हिलने डुलने लगते हैं, स्थावर चीज हिलने लगती है, और जो चलायमान वस्तु है जैसे नदी बह रही है वो स्तब्ध होकर रुक जाती है। ऐसे भगवान की वेणु की मधुरता के बारे में वर्णन किया जाता है। और जो लोग ऐसी मधुर बांसुरी और वंशी की ध्वनि को सुन लेते हैं उनका चित्त इस प्रकार से आकर्षित कर लेते हैं भगवान, मन उनका चित्त और कहीं जगह जा ही नहीं सकता। तारुण्यामृतपारावार तरंग लावण्य सार ताते से आवर्त भावोद्गम वंशी ध्वनि चक्रवात नारीर मन तृण पात तहा डूबाय नह य उद्गम। देखिये कविराज गोस्वामी की मधुरता, इतना सुंदर उन्होंने श्लोकों की रचना की है कि इसलिए उनको दिया गया है पदवी कविराज। ऐसा संसार में कोई कवि नहीं हुआ होगा जो इस प्रकार से यमक, आप जानते हैं यमक अलंकार होता है, यमक के रूप में राइमिंग वर्ड्स जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, जो संपूर्ण सिद्धांत और लीलाओं को यमक के द्वारा प्रस्तुत करे, ऐसा अभी तक कोई कवि संसार में नहीं हुआ है कि, और इतना मधुर रूप से। इसलिए कितना मधुर है चैतन्य चरितामृत, इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्तास चैतन्य चरितामृतम। इतना मधुर है, इसलिए श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, नित्य रूप से इसे सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को कहा करते थे कि ये जो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत है, हर एक व्यक्ति ने 100-100 बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, नित्य रूप से उसे सुनते रहना चाहिए सुनते रहना चाहिए सुनते रहना चाहिए। गीयताम गीयताम मुदा, और गाते गाते उसे आनंद से उसे हमेशा 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 गाते रहना चाहिए गाते रहना चाहिए गाते रहना चाहिए। चिंतताम चिंतताम भक्तास, चिंतन करते रहना चाहिए हमेशा 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 उसका चिंतन करते रहना चाहिए, किसका? चैतन्य चरितामृतम। तो यह है चैतन्य चरितामृत, इतना इतना मधुर ग्रंथ। हम लोग जब स्कूल में जाया करते थे तब किसी कवि ने केवल 4 पंक्तियां यमक अलंकार के रूप में प्रस्तुत कर दी तो उसका गुणगान होता था। तो वास्तव में ऐसे ऐसे कविराज गोस्वामी, इनका वास्तव में जो है वो गुणगान होना चाहिए। कितना कितना मधुर रूप में संपूर्ण लीलाओं को, और न केवल लीला, लीला को तो भी किया जा सकता है लेकिन सिद्धांत आदि लीला भी आप यदि पढ़ रहे होंगे अभी अध्ययन के तौर पे, तो सिद्धांत भी उन्होंने काव्य के द्वारा प्रस्तुत किया है, इसलिए वो भी मधुर लगने लगता है। तो इसलिए जो लोगों के मन में डर होता है ना कि ये अगला PhD का लेवल है, वो PhD लेवल केवल क्यों कहा गया है, जैसे हमने कहा कि वो कठिन है इसलिए PhD नहीं है। उसके विषय जो केवल ऊंचे स्तर के है, जैसे श्रीमद् भागवत में राधारानी का नाम ही नहीं है लेकिन राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, तो इसलिए वो जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी उसे कहा गया है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं अपने जब आखिरी दिन वो गिन रहे थे इस धरातल पर, वो चैतन्य चरितामृत ही केवल सुना करते थे पढ़ा करते थे। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश निकले थे 1965, तब उस समय अपने साथ वो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लेके गए थे, और अपनी वो जो जलदूत डायरी उसमें वो लिखते हैं कि दिस इज माय ओनली सोलेस चैतन्य चरितामृत, ये मेरे लिए अभी एकमात्र सहारा रह गया है जिसका मैं आस्वादन कर पा रहा हूं, ये है चैतन्य चरितामृत। तो इसलिए सारे भक्तों को जो है वो चैतन्य चरितामृत का आश्रय लेना चाहिए। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम उदा चिंतताम चिंतताम भक्ताश चैतन्य चरितामृतम। तो कितना सुंदर यहाँ पर जो है वो वर्णन किया जाए है, किस किस का वर्णन करते हैं, जो गोपियां और कृष्ण इनके संबंध का बारे में तुलना किया गया है। कृष्ण कहा है तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार, तारुण्यामृत पारावार, भगवान श्री कृष्ण तारुण्यता के अमृत के सिंधु है, तारुण्य उसका पार, उसका कोई और छोर नहीं नाप सकता। तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार, और उनका जो लावण्य है वो उस समंदर की तरंगों के समान है। ताते से आवर्त भावोद्गम, जो उनका प्रेम रूपी भाव प्रकट होता है वो एक आवर्त के समान है। आवर्त समझते हैं भोरा, आवर्त उस समंदर में भोरे के समान है। और जो उसमें जो भगवान कृष्ण की जो वंशी है वो किसके समान है? वंशी ध्वनि चक्रपात, वो जो है वो चक्रवात के समान है। और जो गोपियां हैं उनका मन कैसा है, उनके मन की तुलना की जाती है, उनके मन कैसे हैं वो 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 उसकी तुलना की गई है पत्ते या तृणपात तृण के समान। वंशी ध्वनि चक्रवात नारीर मन तृणपात, तो जो चक्रवात आता है जैसे तृणावर्त आया था तो सारे अपने साथ उड़ा, जैसे बहुत जोर का हवा चलती है तो सारे पत्ते, कभी कभी तो पेड़ भी वो हिला देते हैं। जो जगन्नाथपुरी में अभी जो आया था, बहुत बड़ा वादल आया था, तो उससे कई सारे पेड़ गिर जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितने महीना तक नहीं थी वहां पर, तो इससे सारे जो तृणतुल्य वस्तुएं उनको उड़ा के लेके जाते हैं अपने साथ में। तो उसी प्रकार से वंशी ध्वनि चक्रपात नारीर मन तृणपात तहा डुबाई नहय उद्गम। तो इस तारुण्य सागर में वंशी के चक्रवात निकलती है और जो नारियां हैं, गोपियां हैं, उनके मन को आकर्षित कर लेते हैं, उड़ा के लेके जाते हैं और इसमें डुबा देते हैं। ना हो यह उद्गम, और वो वहां से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाती है, वहां से कोई उन्हें उठा ही नहीं सकता, वो उठती नहीं है। इस प्रकार से भगवान का इतना सुंदर मधुरिमा रूप है, उस रूप को कोई यदि व्यक्ति देखता रहे तो केवल देखता ही रहेगा। ऐसा महाप्रभु कह के श्रीमद भागवत का श्लोक सुनाते हैं, दशम स्कंद का। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रुपुः दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। भगवान कृष्ण का सुंदर मुखमंडल कैसा है। यस्य आननम, आनन का अर्थ होता है चेहरा। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, मकराकृति कुंडल पहने हुए वो उनकी कर्णों की शोभा बढ़ा रहे है। हम उस रूप को हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर श्लोक श्रीमद भागवत के, हमारे सामने वो प्रकट हो सकते हैं भगवान के रूप। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम। उनके उनके कपोल चमक रहे हैं और उनकी हासी उसके अंदर वो चार चांद लगा रही है। भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रुपुः दृशिभिः पिबन्त्यो, जो अपने दृष्टि के द्वारा इसका पान कर रहे हैं, पिबन्त वो पी रहे इसको, न तत्रुपुः लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहे, नित्य उत्सव हो रहा है। मानो मानो आंखों के लिए भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखना ये एक नित्य उत्सव है। नित्योत्सवम न तत्रुपुः दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। वो आनंदित हो रहे हैं, मुदिता, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सुंदर मुखमंडल देखने के पश्चात वो आनंदित होते हैं। कौन आनंदित होता है? नारियो नराश्च, जो पुरुष और स्त्रियां जो भी देख रहा है वो आकर्षित हो रहा है और आनंदित हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्रोधी भी हो रहा है। क्यों क्रोध आ रहा है? अभी ऐसा कभी हो सकता है? मुदिता कुपिता दोनों एक साथ, आनंदित भी हो रहा है और क्रोधित भी हो रहा है। आनंदित इसलिए कि कृष्ण के मुखमंडल का भी आस्वादन हो रहा है, और कुपिता निमेश्च, कुपिता क्रोधित इसलिए हो रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी, इनको कुछ अकल ही नहीं है, ये निमेश डाल दिए, मतलब आंखों के ऊपर पर्दे डाल दिए। पर्दे नहीं डालने चाहिए थे, हम लोग अविरत भाव से उनका आस्वादन कर सकते थे। अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटि युगायते तम उपेक्षताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृद्रशाम। ये जड़ बुद्धि वाला ब्रह्मा जी, इसको कुछ आता नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है, इस प्रकार से जो है वो उनका वर्णन करते हैं। अभी महाप्रभु बताते हैं भगवान कृष्ण का जो मुखमंडल है वो एक चंद्रमा के समान है और उनका शरीर है वो सिंहासन के समान है। तो उनके सारे सिंहासन के ऊपर चंद्रमा रूपी राजा बैठा हुआ है और जो सारे चंद्रमाओं के ऊपर शासन करता है। और भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण अंग में कितने सारे चंद्रमाएं हैं उसका महाप्रभु वर्णन करते हैं। कितने चंद्रमाएं हैं? 24.5, 24 चंद्रमाएं हैं। आप कहेंगे ऐसे ऐसे कैसे 24, ये आधा चंद्रमा किधर से आ गया? तो 24 चंद्रमा भगवान कृष्ण उनके साथ तुलना करते हुए महाप्रभु कहते हैं कि ये 24 चंद्रमाएं कैसे बनती है, 24.5 moon। तो वो उसकी गणना करते हैं महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुनाते हुए। दुई गंड सूची कर्ण जीनी मणि सुदर्पण से दुई पूर्ण चंद्र जानी ललाटे अष्टमी इंदु तहाते चंदन बिंदु से एक पूर्ण चंद्र मानी। तो आप गणना कर सकते हैं, सबसे पहला है उनका पूर्ण चंद्र, एक चंद्र, संपूर्ण मुखमंडल एक चंद्रमा है। दुई गंड सूचिकन, उनके दो गाल है कपोल वो चिकने हैं, वो दो पूर्ण चंद्र के समान है। तो एक पूर्ण चेहरा हो गया एक चंद्र, दो उनके गाल चिकने, वो दो चंद्रमा कितने हो गए टोटल तीन, ललाटे अष्टम इंदु इतने मतलब अष्टमी का चांद वो होता है आधा, इसलिए उनका जो ललाट है वो आधा चंद्रमा के समान है, तो हो गए साढ़े तीन। और तहा ते चंदन बिंदु, उसके ऊपर जो चंदन की बिंदु लगी हुए वो एक पूर्ण चंद्रमा के समान है, तो वो हो गए साढ़े चार। एक पूर्ण, दो गाल तीन, आधा साढ़े तीन, और एक उनका चंदन का बिंदु, ऐसे हो गए साढ़े चार। तो साढ़े चार बन गए, और अभी अगले दस और दस ऐसे बीस बनते हैं, तो साढ़े चौबीस। तो ये दस और दस कौन से है, कर अनख चांदे रहाट, वंशी ऊपर करे नाट, तार गीत मुरली रतान, न पद नख चंद्र गण, तले करे नरतन, नुपुरे र ध्वनि यार गान। कर नख चंदेर हाट, उनके जो हाथ है उनकी जो अंगुलियां है उसके जो नख है वो नाखून ये हो जाते हैं दस। वो क्या करते हैं, ये चंदेर हाट, ये चंद्रमाओं का बाजार है, दस चंद्रमाओं का बाजार है। वंशी ऊपर करे नाट, ये वंशी के ऊपर नाट करते हैं, तार गीत मुरली रतान, और इससे जो मुरली की तान आती है वो उनका गान है। तो ये चंद्रमाओं का गान है, वंशी से आने वाला ध्वनि। पद नख चंद्रगण, और उनके जो चरण है उसकी जो दस अंगुलियां हैं उनके जो नाखून है वो दस चंद्रमा है। तले करे नर्तन, और जो भगवान कृष्ण नाचते हैं तो उनके चरण इस प्रकार से हिलते डुलते हैं, वो नर्तन करते हैं। नुपुर एर ध्वनि यार गान, और जो नुपुर की ध्वनि वहां से जो निकलती है वो उन चंद्रमाओं का गान है। तो हाथ के चंद्रमा, हाथ के नाखूनों का जो गान है वो है वंशी की ध्वनि, और उनके चरणों के जो अंगुलियां हैं उनके चंद्रमाओं का गान है वो है नुपुर की ध्वनि। तो ऐसे साढ़े चौबीस चंद्रमा रूपी सुंदर मनमोहक कृष्ण, साढ़े चौबीस की गणना आपको समझ में आ गई। एक पूर्ण चंद्र उनका मुखमंडल, दो उनके गाल तीन, आधा उनका कपोल साढ़े तीन, एक उसकी चंद्रमा की बिंदु साढ़े चार, दस हाथ के अंगुलों के नाखून और दस चरणों के अंगुलियों के नाखून, ऐसे बनते हैं साढ़े चौबीस। तो इस प्रकार से 24.5 साढ़े चौबीस जो है वो चंद्रमाओं की तुलना की गई है। और इस प्रकार से जो है वो जब कोई ऐसे मधुरिमा भगवान कृष्ण की देख लेता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। नार्यो नराश्च मोदिता कुपिता निमेश्च, और कभी संतुष्ट नहीं होता है, इनसैचिएबल, वो पीता ही रहे ऐसा उसे लगता है। और जो भक्त भक्ति भाव से इस प्रकार का वो भगवान के मधुर स्वरूप का आस्वादन करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि मुझे केवल दो आंखें मिली है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, क्या क्या करूं। जैसे रूप गोस्वामी जब भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्णेति वर्ण द्वयी, वो कहते हैं कि जब कृष्ण लेता हूं तो मुझे लगता है कि एक मेरी जिह्वा कम पड़ रही है, दो कान कम पड़ रहे हैं, मुझे लाखों जिह्वाएं और करोड़ों कान होने चाहिए तब मैं इसका ठीक से आस्वादन कर सकता हूं। तो उसी प्रकार से जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो कहते हैं कि केवल दो आंखें क्यों दी है मुझे, ना दिले क लक्ष कोटी, सबे दिला आंखी दूटी, ताते दिला निमेश आच्छादन, विधि जड़ तपोधन, रस शून्य तार मन, नाही जाने योग्य सृजन। क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी, ना दिले के लक्ष कोटी, लाखों करोड़ों आंखें होनी चाहिए, सबे दिला आंखें दूटी, लेकिन कितने दी है, चाहिए लाखों, दी है दो, ताते दिला निमिष अच्छा दोन, दो दिए और उसमें भी निमिष रूपी कवर डाल दिया है, वो भी बीच बीच में पलके झपकती है। क्या ये विधि जड़ तपोधन, जो विधि मतलब जो ब्रह्मा जी है वो केवल तपस्या का धन अर्जित किए हुए हैं, लेकिन ये जड़ बुद्धि वाले हैं, रस शून्य तार मन, उनका जो मन है रस की रीति को नहीं समझते, वो रस शून्य है, नहीं जानने योग्य सृजन, वो सृष्टि कैसे करने इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। हमें बोलना चाहिए सृष्टि करने के लिए, सबको लाखों करोड़ों आंखें हम लोग दे देंगे और निमेश एक भी नहीं देंगे, देखते रहो कृष्ण की ओर। ऐसे कृष्ण के भक्त का जो है वो रूप उसका भाव यहां पर जो है वो बताया गया है। तो कृष्ण कैसे होते हैं, कृष्ण का संपूर्ण अंग है मधुर, तो यहां पर बताया गया है मधुर, सुमधुर और अति मधुर। तो तो उनका जो अंग है उसके अंदर भी तीन ग्रेडेशन बताए गए हैं कृष्ण के अंदर। सबसे पहले मधुर, उनका संपूर्ण अंग है मधुर। उसके पश्चात है सुमधुर मुख इंदु, उनका जो मुखमंडल है वो सुमधुर, और उसके ऊपर भी जो है वो अति मधुर, वो क्या है, उनकी स्मित हास्य, वो है अति मधुर। तो संपूर्ण शरीर उनका मधुर और उनका मुखमंडल सुमधुर, और उसके ऊपर उनकी जो स्मित हास्य है वो है अति मधुर। और जब वो हास्य को कोई देखता है, हासम हरे अवनताखिल लोक तीव्र शोक श्रुसागर विशोषणम अत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाय यास्य भूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है कि हासम हरे, जो भगवान का स्मित हास्य है, हासम हरे अवनताखिल लोक तीव्र शोक श्रुसागर, जो शोक के अश्रुओं के सागर में जो डूब रहे है उसका शोषण करने वाला यह भगवान का स्मित हास्य है। और ऐसा स्मित हास्य इतना मधुर है, मधुरम 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 मधुरम, ऐसा कहता बिल्वंगल ठाकुर, इनका एक श्लोक उद्धृत किया है कविराज गोस्वामी वहां पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाते हुए। तो इस प्रकार से सुमधुर अति मधुर जो है वो भगवान का रूप है, और उसमें इनका स्मित हास्य जो आइसिंग ऑन द केक कहा जाता है, और उससे जब वंशी की ध्वनि निकलती है उसके बारे में तो क्या कहना, वो सबको जो वो इस प्रकार से आकर्षित कर लेती है। और खास करके सारे स्थावर जंगम वो तो हमने देख लिया, लेकिन उसके पश्चात जो गोपियां सुनती है जो इतने भक्तिभाव से उनको समर्पित है, उनके कानों के अंदर क्या हो रहा है उसका वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी। कानेर भीतर वासा करे अपने तहा सदा स्फुरे अन्य शब्द नादेय प्रवेशीते आन कथा न सुने कान आन बोलीते बोले आन एई कृष्णर वंशी रचरीते। एई कृष्णर वंशी रचरीते, ये कृष्ण के वंशी का चरित्र है। क्या है चरित्र कृष्ण के वंशी का? कानेर भीतर वासा करे, वो गोपियों के कान के भीतर मानो ऐसा पक्षी है जो कान के भीतर जाके घोंसला बना रहा है। कानेर भीतर वासा करे, कान के अंदर वास करते हैं अपने तहा सदा स्फुरे, और वो सदैव वो कानों के भीतर से स्फुरित होते रहते हैं। अन्य शब्द ना देय प्रवेशिते, और कान में यदि कोई डाल दिया है तो दूसरा कोई डालता जा नहीं सकता। हम लोग कभी देखा होगा आपने, भक्त कभी सोते वक्त जब करते वक्त ईयर प्लग डाल लेते हैं, वो प्लग बंद कर दिया कान तो बाहर से कुछ सुनाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से वो वंशी की ध्वनि वो अंदर चली गई है, और अंदर अभी बाकी किसी ध्वनि को आर शब्द ना देय प्रवेशिते, दूसरे किसी शब्द को प्रवेश नहीं देती है, किसी भौतिक वार्ता को प्रवेश नहीं देती है। क्या न्यूज है, क्या खबर है, क्या भौतिक गाना है, किसी को अंदर नहीं आने देती। अंदर केवल वंशी की ध्वनि। अन कथा ना सुने कान, बाकी कुछ उनके कान नहीं सुनता है। आन बोलिए बोले आन, और जब लोग बोलते हैं उनके साथ तो उनके शब्द नहीं सुन देते हैं, इसलिए वो कुछ भी जवाब देती है, इसलिए लोग उन्हें पागल कहते हैं। ए कृष्णेर वंशी रचरित, ये भगवान कृष्ण की वंशी का जो है वो चरित्र। और महाप्रभु कहते हैं कि अरे सनातन, मैं जो बोलना चाहता था वो मैं बोला ही नहीं हूं अभी तक। तो कृष्ण का इतना ऐश्वर्य और मधुर बोले कि कृष्ण ने आपको देख के मेरे अंदर से ये बुलवाना चाहते थे शायद, जो मैं नहीं बोलना चाहता था, तो जो बोलना चाहता है वो मैं दूर रह गया, अलग ही कुछ बोल दिया है। तो ये ऐश्वर्य और माधुर्य से चैतन्य महाप्रभु इतने विमोहित हो जाते हैं, इतने विक्षुब्ध हो जाते हैं कि वो वहां पर सनातन गोस्वामी को फिर आलिंगन कर देते हैं। और इतना इतना मधुर वर्णन यहाँ पे किया गया है, कृष्णर माधुरी आर महाप्रभुर मुखे इहा यही सुने से ही भासे प्रेम सुखे। कविराज गोस्वामी इसका विराम देते हुए कहते हैं कि एक तो आपने क्या सुना है अभी, कृष्णर माधुरी, कृष्ण की माधुरी सुनी है, आर महाप्रभुर मुखे, कहां से सुनी है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुनी है। इहा यही सुने से ही भासे प्रेम सुखे, जो सुन लेता है उसे क्या होगा, कृष्ण प्रेम के रस का आस्वादन करने के लिए वह व्यक्ति पात्र बन जाएगा। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और वो आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात हमारी प्रथा के अनुसार इस अध्याय का पहला श्लोक अध्याय 21 पहला श्लोक कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जो ऐश्वर्य और माधुर्य इसका आस्वादन कराए है उसके बारे में कहते कि किस किस को वो कैसे मिला हुआ है। अगत्येक गतिम नत्वा हीनार्थाधिक साधकम श्री चैतन्यम लिखाम्यस्य माधुर्य ऐश्वर्य शीकरम। वो कहते कि माधुर्य ऐश्वर्य शीकरम, जो भगवान की माधुर्य और जो ऐश्वर्य है उसका शीकरम, शीकरम का अर्थ होता है एक छोटा सा कण। शीकर मतलब जैसे सागर है, सागर से एक बूंद निकालो और उस बूंद को ऐसा जब छिटकाया जाएगा तो जो एक छोटा सा जो जो सीखा है आया हुआ उसे कहते हैं शीकर। तो माधुर्य और ऐश्वर्य का शीकरम श्री चैतन्यम लिखामी अस्य, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं लिख रहा हूं। क्या हो रहा है इससे, उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनके ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन करता हूं। क्या है, कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्ध आत्मा मतलब हम लोग, हमारे लिए अत्यंत हितकारी है और वे उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय है किनके लिए, जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते हैं। तो हम लोग जो लोग अगत्येक गतिम, जिसकी कोई गति नहीं है, जिसके कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, उसके लिए एकमात्र आश्रय है, और जो वास्तविक लक्ष्य नहीं जानता है उनके लिए एकमात्र आश्रय, और जो आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हीन अर्थ अधिक साधकम, जिसके जीवन में कुछ अर्थ ही नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल शून्य है, उनके लिए ये अत्यंत हितकारी औषध है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अत्यंत हितकारी क्या है मेरे लिए वो बताओ, तो सबसे अत्यंत हितकारी हमारे लिए केवल एक है, जो ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन किया गया है इतना सुंदर रूप से, उसको जो है वो बारंबार सुनना, और जब हम इसे सुनेंगे तब हमें संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, और जो संतुष्टि प्राप्त करने के पश्चात जो है वो असंतुष्ट रहता है। जैसे भगवान की मधुरिमा सुंदरता को वर्णन जब देखते हैं हम लोग तब हमारी आंखें असंतुष्ट रहती है, बार बार देखने को मन करता है, उसी प्रकार से जब यह सुना जाता है तो बार बार सुनने का मन करता है। इसलिए श्रीमद भागवत का जो तृतीय श्लोक है उसमें वर्णन करता है, निगम कल्पतरोर गलितम फुलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहूर अहो रसिका भुवि भावुकाः। रसिका और रसिक लोग, आप क्या करो, ये जो ये सब पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, ये रसों का आलय है, इसे आप पियो और रसमालयम मुहू पुनः पुनः पियो पियो। जैसे जैसे कोई पियक्कड़ व्यक्ति होता है ना, जो जो पियक्कड़ होता है वो पीता है, नशा करने के पश्चात गिर जाता है, गिर के वापस उठ जाता है, उठ के वापस पीता है, पी के वापस गिरेगा, तो उठेगा पिएगा गिरेगा, उठेगा पिएगा गिरेगा, उसी प्रकार से भक्त जो है वो चैतन्य चरितामृत का ऐसे आस्वादन करते हैं। सोने से पहले पिएंगे, सो जाएंगे, उठेंगे वापस पिएंगे, पिएंगे और दूसरों को पिलाते रहेंगे, और सारे एक भक्तों की संगत। तो पियक्कड़ अकेला नहीं पीता, उसको मजा कब आता है, जब सारे दूसरे लोगों के साथ जब पीता है तो उसे और अच्छा चढ़ती है नशा। तो इसी प्रकार से कविराज गोस्वामी के द्वारा और काव्य रूप में प्रस्तुत किया गया, चैतन्य महाप्रभु की लीला पहले ही मधुर है और कविराज गोस्वामी और अपना मधुरता डाल रहे उसके अंदर, तो ये और इतनी मधुर हो गई है कि इस मधुरता का आस्वादन, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि कम से कम 100 बार तो इसे पढ़ना ही चाहिए। तो इसलिए हमें भी भक्तों को ऐसे जब भी, इसलिए हमने जो है वो परीक्षा किस लिए रखी है आदि लीला की, तो कई भक्त है कि जो कह रहे कि हमारा पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है इसलिए वो फिर छोड़ दे रहे, तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। अर्ध अक्षरम अंत लीला में हम इसी चर्चा करेंगे, कोई आधा अक्षर भी चैतन्य चरितमृत का पढ़ता है उसे क्या लाभ होता है। तो इसलिए एक श्लोक भी पढ़ो, एक अध्याय भी पढ़ लिया तो भी काफी है, लेकिन आप इसे पढ़ते रहिए बारंबार बारंबार बारंबार। चिंतताम चिंतताम भक्त, उसको चिंतन कीजिए, उसको बार बार सुनिए, बार बार किसी और को सुनाइए समझाइए, इससे क्या होगा, इससे जो है वो हमारा इस ग्रंथ के प्रति प्रेम, महाप्रभु की लीला के प्रति प्रेम और बढ़ेगा, और शीघ्र पाए श्री कृष्ण चरण, और हम लोग बहुत शीघ्रता से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकते हैं इसी देह में, इसी शरीर में, एक जीवन काल में हम लोग वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद ने आश्वासन दिया हुआ है इसका, लेकिन कई बार हम लोग इतना सब करके भी ऐसा लगता है इतना मधुर रूप है, लेकिन ये मधुरी तो मैंने कभी अनुभव नहीं की है। मैं मैं इसी जन्म में भगवत धाम जाऊंगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मेरी अभी हरिनाम में भी रुचि नहीं आई है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे लाखों कान चाहिए मुझे तो, और मैं अगणित नाम लेते रहूं। हरिदास ठाकुर 300,000 नाम लिया करते थे, लेकिन मैं जो हूं ये एक नाम लेते हुए भी मुझे नींद आ लगती है, झपकी लगती है, और आंखें यहाँ पे ये लोग कह रहे लाखों आंखें दो और निमेश निकाल दो, और मैं जब किताबें खोलता हूं तो मेरी आंखें बंद होती है, मुझे लगता है दो आंखें क्यों दी, और दो आंखें उसमें भी एक आंख हमारी टीवी के ऊपर एक आंख कहीं और होती है। तो इस प्रकार से हम क्यों इस संसार में अटके हुए हैं, और यहां से बाहर निकलने के लिए जो भक्ति लता रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने 19वें अध्याय में दिया था, जो भक्ति लता है, जो भक्ति लता बढ़ती है और कृष्ण के चरणों तक पहुंच सकती है और उसका आस्वादन हमें करना है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा ये हमारी भक्ति लता खुंटित हो जाती है, रुक जाती है और उस प्रेम को आस्वादन नहीं करने देती, इसकी चर्चा हम करने वाले हम कल सुबह के विशेष भागवतम सत्र में, जो केवल रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। 19वां अध्याय उसका हमने शीर्षक रखा हुआ है कि हमारी भक्ति लता की बढ़ोतरी करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कल दिन में दो बार मिलने वाले हैं, सुबह 8 से 9 बजे रूप शिक्षा की चर्चा करेंगे और शाम को 5:30 बजे हम लोग सनातन शिक्षा की चर्चा करेंगे। तो यह संबंध ज्ञान तो हो गया अभी कंप्लीट 20 और 21वें अध्याय में, अभी कल इस ये संबंध को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या करना होगा, उसके लिए अभिधेय क्या है, उसके लिए विधि क्या है, उस विधि की अतिशय विस्तार से जानकारी महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देंगे। और ये जानकारी यदि कोई भक्त समझ लेता है और उसके जीवन में पालन करता है तो उसे जानने के लिए और कुछ नहीं रहता। मैं आज ही एक भक्त को बता रहा था कि यदि रूप गोस्वामी को दी हुई शिक्षाएं और सनातन गोस्वामी को दी हुई शिक्षाएं यदि कोई भक्त ठीक से समझे तो उसे बाकी अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो हमें केवल उसको ठीक से पढ़ना है और ठीक से समझने का प्रयास करना है। तो ये यदि हम लोग करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति अच्छे से हो सकती है। और हमने सोचा था कि जो हम लोग सवाल सीसीसी ग्रुप में कई सारे प्रश्न, जो रोज हम लोग एक प्रश्न देते हैं, तो कम से कम उन प्रश्नों के जवाब भी ढूंढ देंगे आप, उसमें हम लोग अध्याय का नंबर भी देना प्रारंभ किए हैं, तो अध्याय नंबर भी डालेंगे तो अध्याय कम से कम आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो हम सोचे हैं कि कई भक्त जो है वो उसके जवाब हमें भेजते हैं, हमने कई बार बताया कि आप उसे जवाब हमें मत भेजिए, लेकिन उन्हें शाश्वती नहीं होती कि सही है कि गलत है। तो हम लगभग सुबह 11-12 के बीच में प्रश्न डाल देते हैं। तो हम सोचे कि उसके हमारा जो सत्र है उसके अंतिम में हम उसका जवाब देंगे आपको, सही जवाब क्या है, ताकि आपका कुछ सत्र भी मिस हो रहा है तो आप वो जवाब सुनने के लिए तो कम से कम जो है वो आ जाएंगे। तो आज का हमारा प्रश्न था आदिलीला का अध्याय 12। आदिलीला का अध्याय 12 आपको शीर्षक पता होगा, अद्वैत शाखा। तो उसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन जो है वो अद्वैताचार्य के पुत्र नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए थे अच्युतानंद, गोपाल, कृष्ण मिश्र और कमलाकांत। तो कौन पुत्र नहीं है, इसका सही जवाब है डी, कमलाकांत। जो कमलाकांत थे वो अद्वैताचार्य इनके सेवक थे, वो उनके पुत्र नहीं थे। बाकी अच्युतानंद, गोपाल तो हमें पता है, हमने देखा था मध्य लीला में भी इसका वर्णन आया था कि किस प्रकार से जब गोपाल नृत्य करते हुए बेहोश हो जाते तो महाप्रभु उनके छाती के ऊपर हाथ रखते हैं। तो परीक्षा हमारी आदि लीला की है, ये सारे चरित्रों का वर्णन वहां पर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम लोग मध्य लीला अंत्य लीला भी सुनते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो पास्ट टाइम कहां पर हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी जब हो जाएगी तो जो आदि लीला के 10-11-12 अध्याय हमें कठिन नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमें मध्य लीला भी ठीक से सुननी है। तो मध्य लीला के सत्र भी आप मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो शिक्षाएं तो है ही, लेकिन जो अलग अलग पात्र आ रहे हैं उन पात्रों के साथ क्या लीलाएं हुई है वो जब समझ में आ जाती है, तो उन पात्र कौन थे, क्या थे, उसके बारे में हम आदि लीला और अच्छे से पक्की हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, एक धागा है, धागों के अंदर पिरोया गया है, तो आदि मध्य और अंत्य जब ऐसा मिल जाएगा तब ये माला पूरी हो जाएगी और इसे हम लोग फिर भगवान को चढ़ा सकते हैं, ये पूरी माला है। तो इसे आप ठीक से सुनते रहिए, और कई सारे भक्त सुन रहे हैं उनको भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे हमने कहा अमृतसर के कई सारे कांग्रीगेशन के भक्त सुन रहे हैं, और नोएडा के भी कुछ भक्त है खास करके, उनका भी संदेश आया हुआ है कि वो भी इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत का जो है वो आस्वादन कर रहे हैं। सारे भक्तों का हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप लगातार बिना रुके इतने दिनों से आप जो है वो सुनते आ रहे हैं, इसलिए आपके चरणों में भी हमारे कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।